नीति वचन उसका 3 अध्याय पहले पद से लेकर 12 पद तक। और आपने ध्यान दिया होगा जो हमने भजन संहिता 119 पढ़ा था, 52 से 57 तक, 72 तक जो पढ़ा था, उसमें भी वही चीजें हैं जो अभी हम देखेंगे, जो नीति वचन 3 में हम पढ़ना चाह रहे हैं। और अगर आप उसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो ठीक वही चीज उसमें दिखाई दे रही है। अर्थात परमेश्वर का वचन बार 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 मुझे चाह और आपको चाहता है कि हम दौड़ करके वापिस वचन में आए। और एक मसीह जीवन बार बार परमेश्वर के वचन में आने वाला जीवन है, और इससे हमें थकना नहीं चाहिए, इससे हमें हारना नहीं चाहिए। और हमारे जीवन का सहारा, हमारे जीवन का मार्गदर्शक वही है। और इसलिए दाऊद कहता है, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। सो आइए नीति वचन उसका 3 अध्याय 1 से 12 तक मैं पहले आपके लिए पढ़ूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना पर मेरी आज्ञाओं को हृदय से मानना, क्योंकि इनसे तेरे जीवन के दिन और वर्ष बढ़ेंगे और तू अधिक कुशल से रहेगा। करुणा और सच्चाई तुझसे अलग ना हो, उन्हें अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय पटल पर लिख लेना। इस प्रकार तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के की दृष्टि में अनुग्रह और यश प्राप्त करेगा। तू संपूर्ण हृदय से यहां पर भरोसा रखना और अपने समझ का सहारा ना लेना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में तू बुद्धिमान ना बनना, यहोवा का भय मानना और बुराई से विमुख रहना। इससे तेरा शरीर स्वस्थ रहेगा और तेरी हड्डियों को पुष्टता प्राप्त होगी। अपनी सारी उपज के प्रथम फल से तथा अपनी संपत्ति के द्वारा यहोवा का आदर करना, तब तेरे भंडार बहुतायत से भरे रहेंगे और तेरे कुंड नए दाखरस से उमड़ते रहेंगे। हे मेरे पुत्र, यहोवा की ताड़ना का तिरस्कार न करना और न उसके डांटने को बुरा मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उससे डांटता भी है, जैसे कि पिता उस पुत्र को जिससे वो अधिक चाहता है। सो आज इन 12 पदों का जो मुख्य थीम हम देखना चाहते हैं वो सही निर्णय लेने के लिए के सिद्धांत। हमारे जीवन में हमें बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं और लेने पड़ेंगे 2020 में, जब परमेश्वर ने हमें नए वर्ष में, तो हमें प्रतिदिन अपने जीवन में बहुत ही अधिक निर्णय लेने पड़ते हैं। वो हमारे व्यक्तिगत रीति आत्मिक जीवन के लिए हो सकते हैं, सामाजिक जीवन के लिए हो सकते हैं, आर्थिक जीवन के लिए हो सकते हैं, पारिवारिक जीवन के लिए हो सकते हैं, और बहुत रीति से जो हम संसार में रहते हैं, तो हमें सोचना होता है, विचार करना होता है और निर्णय लेना होता है। दाऊद का बेटा सुलेमान, जिस दाऊद ने भजन संहिता 119 में को लिखा और बहुत सारे भजनों लिखा, और एक विशेष बात ये थी, ये पिता ने अपने पुत्र को बालकपन से वचनों को सिखाया था, और इसीलिए वो 4 अध्याय के मैं लिखता है, 4 नीति वचन 4 में 2-3 पद में, बल्कि मैं 1-2-3 पढ़ूंगा। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उत्तम शिक्षा देता हूँ, मेरे शिक्षा को त्याग ना देना। जब मैं भी अपने पिता के सामने छोटा और अपनी माता की दृष्टि में अकेला दुलारा था, सुलेमान याद कर रहा है, तब उसने शिक्षा देकर कहा, तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे, मेरी आज्ञाओं का पालन कर और जीवित रहे। पहली तारीख को हमने कुछ बच्चों का समर्पण किया और हम लोगों ने प्रार्थना की बच्चों के लिए, माता पिता से कुछ वाचाएं बंधाई, प्रतिज्ञाएं ली। ये उत्तरदायित्व माता पिता के, जब वो बच्चे छोटे हैं उनको परमेश्वर की वचन की शिक्षा दी जाए, और ये सुलेमान याद कर रहा है। और सुलेमान ने इस बात सीखा था और इसीलिए वो अपने उन अनुभवों से कुछ बातों को लिख सका। और जो 3रा अध्याय हम देखना चाहते हैं आज, इन 12 पदों को, उस सच में सुलेमान ने उन अनुभवों को अपने जीवन में प्राप्त किया था, उस बुद्धि को प्राप्त किया था, उस शिक्षा को प्राप्त किया था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उसने जाना था, इसलिए वो मेरे और आप तक इन वचनों को पहुंचा सका। और मेरे और आपके लिए 2020 के लिए वचन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, यदि हम उनको कानों से समझदारी से सुनेंगे, मस्तिष्क से उसको समझेंगे, हृदय से उसको ग्रहण करेंगे, जीवन में अगर उसका पालन करेंगे और उसके साथ अपने जीवन से प्रदर्शित करेंगे, तो ज़रूर ये वचन मेरे और आपके लिए आशीष में होगा। और ये बहुत ज़रूरी है। और एक विश्वासी को, प्रत्येक विश्वासी, बार बार मैं इस बात को दोहराता हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमें ध्यान से सुनना है, उसको समझना है, उसको ग्रहण करना है, उस पर उसका अंगीकार करते हुए उसका अनुसरण करना है, तब तो वो लाभदायक आ रही है, अन्यथा नहीं है। सुनते तो बहुत हैं लेकिन पालन करने की बात आती है। और जब हम इन 12 पदों को देखते हैं तो 12 इन 12 पदों को कई तरह से हम अध्ययन कर सकते हैं। एक अध्ययन करने का तरीका यह है कि इन 12 पदों में 6 आज्ञाएं हैं और 6 प्रतिज्ञाएं हैं। पहले पद में आज्ञा है तो दूसरे पद में प्रतिज्ञा है, तीसरे पद में आज्ञा है तो चौथे पद में प्रतिज्ञा है, पांचवें पद में आज्ञा है तो छठे पद में प्रतिज्ञा है, सातवें पद में आज्ञा है तो आठवें पद में प्रतिज्ञा है, नवें पद में आज्ञा है तो दसवें पद में प्रतिज्ञा है, ग्यारह पद में अगर आज्ञा है तो उसके साथ बारहवें पद में प्रतिज्ञा है। तो एक तो तरीका यह है जिसमें हम 6 आज्ञाओं को और उनके साथ साथ 6 प्रतिज्ञाओं को देखते हैं। और अब बड़ा आसान है कि घर में जा करके आप 6 आज्ञा को एक साइड में लिख लीजिए और 6 प्रतिज्ञा को दूसरे साइड में लिख लीजिए और उस पर मनन करिए, विचार करिए और देखिए परमेश्वर का वचन कितना गहरा, रिच है। लेकिन थोड़ा देर के लिए मैं उसी बात को दोहराते हुए आपके सामने लाना चाहूँगा। आइए मेरे साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। नीति वचन उस 3 अध्याय पहले दूसरे पद, मुख्यतः जो मुख्य बात है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का आधार है, परमेश्वर के वचन का वो हमारे जीवन का मार्गदर्शक होना है। परमेश्वर के वचन की पालन करने के लिए हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए। सुनना एक अलग है लेकिन पालन करना एक अलग है। और जब तक हम पालन करने के लिए तैयार नहीं है तब तक हमारे जीवन में जो परमेश्वर करना चाहता है वो नहीं है। और यहां पर हम देखते हैं तो एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन चुनाव में सही सिद्धांतों का पालन करता है ताकि वो सही निर्णय ले सके और वचन के अनुसार जीवन व्यतीत कर सके। झूठ, छल, धोखा, बहानेबाजी, व्यर्थ के तर्क वितर्क से बचा रह सके। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन चुनाव में सही सिद्धांतों का पालन करता है ताकि वह सही निर्णय ले सके और वचन के अनुसार जीवन व्यतीत कर सके, ताकि झूठ, छल, धोखे, बहानेबाजी, व्यर्थ के तर्क वितर्क से वो बचा रह सके। परमेश्वर किस प्रकार के व्यक्ति की चाहना करता है? हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमने कहा हमने प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। हम बचपन से यीशु मसीह की कहानी को सुनते हैं। ये संडे स्कूल के बच्चे, जब संडे स्कूल में आप लोग जाते हैं, आप बचपन से, छुटपन से आप संडे स्कूल में इन कहानियों को सुनते हैं जो यीशु मसीह की है। यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। वो हमारे छोटे से हृदय से प्रेम करता है और उस हृदय से वो व्यवहार करना चाहता है। बचपन से, छुटपन से, जब आप स्कूल में जाने लगते हैं, आपके टीचर से आपसे बातचीत करते हैं, आपको सिखाते हैं, आप उसको सीखते हैं और वो चाहते हैं कि उसके अनुसार आप कुछ करें। ठीक इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह हमारा एक बहुत बड़ा अच्छा शिक्षक है। वो टीचर से ही बढ़कर टीचर है और वो भी अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको सबको, चाहे हम छोटे हों चाहे हम बड़े हों, हम सब उसके सामने विद्यार्थी हैं, हम सब उसके सामने बच्चे हैं। और वो मुझे और आपसे, मुझसे और आपसे प्रेम करते हुए हमें सिखाना चाहता है। और इसलिए अगर परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है तो उसकी कुछ अपेक्षा है एक विश्वासी से, एक प्रभु के पीछे चलने वाले व्यक्ति से, एक प्रभु से प्रेम करने वाले से एक अपेक्षा है। और अपेक्षा यह है कि किस रीति से हम उसकी शिक्षाओं का सम्मान कर सकें, उसकी शिक्षाओं का सम्मान। तो पहली बात को जो हम देखना चाहते हैं पहले और दूसरे पद में, परमेश्वर के वचन का अनादर मत करो। पहला, दूसरा, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। जब हम परमेश्वर का वचन का अनादर करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को भूलते हैं, हम वचन के, परमेश्वर के वचन को त्यागते हैं, हम परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पहला स्थान नहीं देते। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का पहला स्थान नहीं तो हम उसका तिरस्कार कर रहे हैं, उसको भूल रहे हैं और अनादर कर रहे हैं। हम कई बार अपने मस्तिष्क से तोड़ मरोड़ करके परमेश्वर के वचन को लाना चाहते हैं। झूठी शिक्षाएं कैसे शुरू होती हैं? कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क उनके सोच और विचार में प्रभुता करता है और इसलिए वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को ला देते हैं, उसी वचन को दूसरी रीति से रखते हैं, साधारण से स्वीकार नहीं करते। और ये हमें देखना है। और कई बार मैं और आप भयंकर अपराध में गिर जाते हैं जब कोई कमी पाते हैं, कोई पाप में पाए जाते हैं, हम बहानेबाजी करके वचन को तोड़ते मरते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार। ये गलत है। वो कहता है तुम परमेश्वर के वचन का अनादर मत करो, तुम परमेश्वर के वचन का तिरस्कार मत करो। वो कह रहा है मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी आज्ञाओं को हृदय से मानना। हृदय तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है और उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, हृदय क्या कह रहा है? नहीं 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 नहीं। और तब हम हृदय से उसको तोड़ मड़ोड़ करके उसमें बहानी बाजी बुझा देते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है, ये मेरा और आपका स्वभाव है। और इसीलिए मुझे और आपको अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में डालना है। वो तो धोखा देने वाली वस्तु है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। वो रोग कौन मनुष्य समझ सकता है? आसानी से हम नहीं समझ सकते। वो हमें धोखा देता है, हमारे साथ छल का व्यवहार करता है। और इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा हृदय में कार्य होना बहुत जरूरी है। कई बार मस्तिष्क में तो हो जाता है लेकिन हृदय में नहीं होता। हम सोच में आके तो प्रभु में आते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा हृदय परिवर्तित नहीं होता, हमारा मन परिवर्तित नहीं होता। प्रभु के उद्धार का कार्य हमारे हृदय में नहीं होता। ज्ञान तो मिल जाता है, ज्ञान जो मस्तिष्क से उत्पन्न हो जाता है वो तो मिल जाता है, लेकिन जो हृदय से में काम होना चाहिए वो नहीं होता। और हृदय में काम ना होने के कारण हम ज्ञान लोग को लेके, मस्तिष्क के विचारों को लेके, सोच को लेकर के चलते रहते हैं। और कितने आज इसी प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मुझे और आपको सोचना है, क्या सचमुच में मेरा हृदय परमेश्वर के वचन को स्थान दे रहा है? मेरा हृदय परमेश्वर के वचन को मान रहा है? मेरा हृदय परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है? और यहां पर कहता है कि आज्ञाओं को हृदय से मानना। दूसरा पद, क्योंकि इससे तेरे जीवन के दिन और वर्ष बढ़ेंगे और तू अधिक कुशल से रहेगा। अगर तू ऐसा करेगा, हृदय से परमेश्वर के वचन को मानेगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? जीवन बढ़ाएगा, वर्ष बढ़ाएगा, कुशलता प्रदान करेगा। जीवन परमेश्वर के हाथ में है, आयु परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर का ये वचन, और बार बार अगर नीति वचन को पढ़ेंगे, अगर आप वचनों में जाएंगे, इवन आप सब उपदेशक को पढ़ेंगे, तो आप वहां देखेंगे परमेश्वर किस प्रकार के जीवन की बात करता है। परमेश्वर किस प्रकार के जीवन की बात करता? परमेश्वर वो जीवन देना चाहता है, केवल ऐसे नहीं संसार के। ठीक है, आयु लंबी हो जाए, बहुत बहुत लोगों की आयु लंबी होती है, लेकिन उस आयु में परमेश्वर का वचन कहता है अगर परमेश्वर किसी को आशीषित करता है तो वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता, और अगर उसके पास दुख आता है तो परमेश्वर उस दुख का निवारण करता है, वो उसके साथ में खड़ा रहता है, उसके साथ में बना रहता है। अय्यूब, बहुत सारी चीज, अलग अलग कहानी बहुत सारे लोगों की है। लेकिन यहाँ पर तो पहली बात यह है कि परमेश्वर के वचन को हमें हृदय से मानना है। इस वर्ष में 2000 वर्ष, आप मुझे नहीं मानो आपने कैसे 7 साल को आरंभ किया, क्या सोच के आरंभ किया, क्या आपने अपने जीवन में निर्णय लिए, क्या आपने परिवार में अपने साथ में निर्णय लिए, पति पत्नी साथ मिलकर के प्रार्थना करी, धन्यवाद दिया एक दूसरे को, बैठे विचार किया, क्या सोचा, क्या करना है परिवार में, बच्चों के साथ क्या करना है। ये कह रहा है तो ऐसा करो। तो पहली चीज वो कहता है, तो परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ मत करिए, उसका अपमान मत करिए। पहली चेतावनी है जो कह रहा है, क्योंकि आरंभ से जब हम यहोशू को पढ़ते हैं, यहोशू उसके एक अध्याय में ही था, और परमेश्वर शुरू से परमेश्वर के अपने वचन के लिए इन बातों को दोहराता रहा है। नहीं नहीं है, अगर हम व्यवस्था, हाँ व्यवस्था विवरण में जाएं, डेटोनमी व्यवस्था विवरण में कुछ एक दो पदों को मैं दिखाना चाहूँगा। व्यवस्था विवरण पूरा निर्गमन का दोहराया हुआ है, जो कुछ निर्गमन हुआ है उसको परमेश्वर के वचन को 6 अध्याय, बार बार में इसको स्मरण करते हैं, 4 पद से, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, यहोवा एक ही है, केवल यीशु मसीह परमेश्वर है, और नहीं, हम 10 को साथ लेके चलते हैं, ये भी ये भी ये भी, नहीं नहीं, वो कोई और गुरु नहीं है, कोई और देवता नहीं है, कोई और नहीं है, कोई एक यीशु मसीह, क्योंकि एक दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने ही हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। एक दिन आएगा वो 50 के सामने नहीं, उन करोड़ों के सामने नहीं, केवल यीशु मसीह सामने हर एक जन घुटना झुकेगा। और इसलिए कह रहा परमेश्वर एक ही है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। आज मैं जिन वचनों को तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं तेरे मन में बनी रहे, तू उनको यत्नपूर्वक बाल बच्चों को सिखाना, तथा अपने घर में बैठे मार पर चलते और लेटते तथा उठते समय उनकी चर्चा क्या करना। जब आप अपने बच्चों को तंबी देते हैं, डिसिप्लिन करते हैं, अनुशासित करते हैं, अभी आगे चल के अनुशासन की बात है, कितनी बार आप अपने बच्चों को वचन का सहारा देते हैं, बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो बाइबल में सिखाया गया है। प्रभु यीशु मसीह के वचन ये कहते हैं, बाइबल ही कहती है, वचन ये कहती है। कितनी बार कह रहा तू अपने बच्चों को बचपन से अपने वचन को सिखाना और उठते बैठते चलते फिरते, आज मैं जिन वचनों को दे रहा हूँ और तू उनको यत्न पूर्वक अपने बाल बच्चों को सिखाना तथा अपने घर में बैठे मार्ग पर चलते और लेटते तथा उठते समय उनकी चर्चा किया करना। यहाँ तक आगे चल के कह रहा उनको अपने हाथ पर चिन्ह रूप से बांधना, वे तेरी आंखों के बीच में टीके का काम करें। वचन की टीकियां लगाइए भैया, कोई बात करता हो वचन से उसको समझा सके। आपके अंदर, मैं अक्सर बोलता हूँ जब कोई मेरे पास आता है प्रार्थना करने के लिए, मेरी आदत कुछ खराब है, अगर हाथ में तागा बंधा होता कुछ, मैं कहता हूँ क्यों करते हैं भैया। परमेश्वर जब बच्चे को जन्म देता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वो बिल्कुल स्वतंत्र करके आता है। थोड़े दिन बाद माँ बाप उसको काले तागे से बांधे, दिपत तू स्वतंत्र है, तुझे बांध रहे, ले बांध। तो उसको यहाँ भी बांध दिया, गले भी बांध दिया, कमर भी बांध दिया, पैर भी बांध, चारों तरफ बांध देते हैं। क्यों? अरे डर ना लगे। अरे डर, 50 बांधो तब भी और डर लगेगा, और डरेगा वो। सोचना हमें, क्यों हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई भाई, क्यों हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? सोचना हमें, इस बात को तोड़वा दीजिए। अगर आप बच्चों को लेके तागे आगे बांधे बैठे, घर में जाके तोड़ दीजिए, नहीं तो मेरे पास ले आइए, भूत मेरे पर चढ़ जाएगा, मैं काट दूंगा उसको, चढ़ने दीजिए मेरे पर, देखिए कैसा भूत है। सच बात है, समझना इस बात को, इस बात को सीखना है। परमेश्वर के वचन का सम्मान करिए, परमेश्वर के वचन के सामने भूत भूत कोई नहीं रुकता, कोई नहीं ठहरता। और आपको सिखाना है, ये लोगों को सिखाना है, इन बातों को समझना है। परमेश्वर का वचन कहता है, वो ये कह रहा है कि तू ऐसा करना। व्यवस्था विवरण में आगे आइए, 13 अध्याय में, एक दो पद दिखाऊंगा केवल, क्या कह रहा है, 4 पद। पिछली बार भी इस पद पर मैंने दूसरे स्थल से दिखाया था। 13 अध्याय, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसकी सुनना, उसकी उपासना करना, उससे लिपटे रहना। कितने आप परमेश्वर के वचन की बातों को सुनते हैं? जब पाप आपके जीवन में आता है, आप पाप से व्यवहार करते हैं, तो कितना बार परमेश्वर का वचन आपके साथ आता है कि भैया ये मत करो, ये पाप है? कितनी बार आप क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को स्थान नहीं देते। वचन को जाके इतवार को आज जाके गीत गाते जरूर है, आराधना जरूर करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन पूरे हफ्ते की बात क्या है? और यहां पर पहली बात कह रहे हैं, परमेश्वर के वचन का अपमान मत करो भैया, उसका अनादर ना करो। तो प्रभु सहायता करें कि हम इस वर्ष के आरंभ में प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे और आपके सहायता करें कि हम वचन का सम्मान कर सके, और तब परमेश्वर हमारे साथ आशीष करेगा। क्या कह रहा हूं? करुणा और सच्चाई तुझसे अलग ना हो। करुणा, मेरे प्रियो, करुणा पर विचार करिए थोड़ा सा। परमेश्वर की करुणा अर्थात दुदया में होकर के मैं और आप बचाए गए। हमने तो पाप किया था, हम तो पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो चुके थे, हम तो भ्रष्ट हो चुके थे, हम पर तो दंड की आज्ञा लग चुकी थी। और परमेश्वर का वचन कहता है जो प्राणी पाप करो निश्चय मारा जाएगा। ये हमारी स्थिति थी, हम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते थे, हमारे अंदर कोई पवित्रता नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन उसने अपनी करुणा में होकर, अपनी दया में होकर, उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जो उठा, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे, मैं और आप विश्वास करें, यदि आपने उस पर विश्वास किया है तो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु की करुणा में होकर मैं और आप बचाए गए, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए क्रूस पर कीमत चुकाई है। और अब कि करुणा और सच्चाई तो उससे लगना, सच्चाई दया हमारे ऊपर, हमारे अंदर पाई जाए और सच्चाई हमारे अंदर पाई जाए। कैसे? कई बार हम लोगों पर दया दिखाते हैं, दया दिखानी हमें जो प्रभु ने हमें और पर दया दी, लेकिन प्रभु की दया और सच्चाई साथ साथ चली है। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो अपने अनादर को, अपने तिरस्कार को स्वीकार नहीं करता। वो परमेश्वर के वचन का अनादर, यूहन्ना 3:16, मैं बार बार बोलता हूँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, ये दया है। अगर वो विश्वास करे पाप क्षमा होंगे, उसकी संतान बन जाएगा, लेकिन जो उसके विश्वास ना करेगा, सच्चाई यह है कि वो दंड प्राप्त करेगा, ये सच्चाई है। और वो दया और सच्चाई में समझौता नहीं करता। और हमारे जीवन में भी हम दया दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई के साथ पाप को पाप करके लेना है हमें, गलत को गलत करके लेना है, अपराध को अपराध करके लेना है, छल को छल करके लेना है, धोखे को धोखे करके लेना है, हमें लेना है। हम दया दिखाने तैयार हैं, लेकिन जब छल है, धोखा है, अपराध है, ये सारी चीजें, उसके साथ अपवित्रता है, उसके साथ हमें बिल्कुल सीधा व्यवहार करना है, ये सच्चाई है। और परमेश्वर के दया और सच्चाई को हम उस रस्से खेल नहीं कर सकते। तो यह कह रहा है, क्या है, लेकिन एक विश्वासी के जीवन में जब परमेश्वर का वचन आपका रहेगा तो कहेगा तुझसे अलग ना हो, लेकिन क्या करना, तू अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय पटल पर लिखना। हार किस चीज का प्रतीक है? हार शोभा का प्रतीक है, हार सम्मान का प्रतीक है। जब आप कहीं जाते हैं लोग आपका स्वागत करते हैं, सम्मान देते हैं, हार पहनाते हैं, है ना, सुशोभा का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। वो कह रहा है ये चीजें जो आपके जीवन में होनी चाहिए, आपके जीवन में ये हार दूर से दिखाई देता है। जब हार पहनाते हैं, अगर बहनें हमारी जब कहीं विवाह में जाती हैं या कुछ हार पहनते हैं तो वो अंदर छिपा के नहीं थी, वो उनको रहता लोग देखें, अच्छी कोई बुरा नहीं है, पाप नहीं है, हाँ बहुत अधिक करना वो होस्ता अलग, लेकिन कोई बात नहीं है। क्या उद्देश्य है? लोग देखें, लोग देख के दूर से, वो तो संसारिक सारी चीजें हैं। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में सच्चाई और करुणा को इस रीति से देखना चाहता है कि वो मुझे और आपको दयालु भी समझें, लेकिन मुझे और आपको सच्चाई के साथ चलने वाला भी दें, लोग देख सके हाँ ये दया करने वाला व्यक्ति है, दया करने वाली बहन है, दया करने वाला भाई है, दया करने दिखाना है, लेकिन ये सच्चा है, झूठ से समझौता नहीं करता, गलत से समझौता नहीं करता, अपराध समझौता नहीं करता, ये सारी चीज है। तब क्या होगा? चौथे पद में, इस प्रकार परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में अनुग्रह और यश पाएगा। ये चीज, ये दया और सच्चाई तुझे परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने, मतलब आत्मिक रीति से और सामाजिक रीति से तुझे क्या करेगी? सम्मानित करेगी। और मेरे प्रियो, लेकिन पहला पद मुख्य पद है परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर के वचन को स्थान देते हैं और इसको करते हैं तो वो हमारे जीवन पाई जाती है परमेश्वर के वचन में कई सारी जगह। इसीलिए दाऊद कई जगह प्रार्थना करता है, भजन संहिता 40:11 में, भजन संहिता 43:3 में, और वो यही प्रार्थना करता है कि सच्चाई मुझे दे दीजिए प्रभु, दया मुझे दे दीजिए, यही प्रार्थना करता है, उसकी जिज्ञासा रही। इसी रीति से नित्य वचन 16:6 देखेंगे, ज्यादा पद मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन 16:6 देखें, 16:6 में करुणा और सच्चाई से अधर्म का प्रायश्चित होता है, करुणा और सच्चाई से अधर्म का प्रायश्चित होता है, और यहोवा का भय मानने से मनुष्य बुराई से दूर रहता है। ये जरूर है, करुणा और सच्चाई, दया और सच्चाई हमारे जीवन के अधर्म को प्रायश्चित में ले आती है। तीसरी बात वो आगे चल के कहता है, कह रहा है चार पद में, अगर ऐसा होगा तो यश प्राप्त कर। पांचवा पद, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना, तेरी निर्भरता परमेश्वर पर, डिपेंड ऑन गॉड, परमेश्वर पर निर्भर रहो, परमेश्वर पर निर्भर रहो अपने सब कुछ के लिए। आज जवान क्यों जल्दी पाप में गिर जाते हैं? परमेश्वर पर निर्भर नहीं है। क्यों हम गलत से समझौता कर लेते हैं? हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं है। हम क्यों गलत मार्ग को चुन लेते हैं? हम परमेश्वर पर नहीं है, निर्भर नहीं है। परमेश्वर का पर निर्भर रहने का मतलब क्या है? और इसीलिए कहता है, उस पद के साथ जोड़ता है, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना, अपनी समझ का सहारा ना लेना। एक व्यक्ति जो अपनी समझ का सहारा लेता है, ओ मैं ऐसा कर लूंगा तो ये ठीक होगा, मैं ऐसा कर लूंगी तो ठीक होगा, ये अच्छा होगा, ये ऐसा होगा, जब वो अपनी समझ को लेता है, वचन को ध्यान देता है, तो वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं है। कठिन परिस्थिति आती है, घटिया आती है, विरोध आता है, समस्या आती है, लेकिन अगर हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो हम कई बार परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं व्यतीत कर सकते। हम परमेश्वर के निर्णय को कई बार, परमेश्वर के न्याय को कई बार अपने हाथ में ले लेते हैं। बाइबल साफ कहती है, और वो इस बात कहते हैं, वो कह रहा है कि तू ऐसा ना करना, संपूर्ण हृदय से, फिर से बात आ रही है, शब्दों को देखिए, हृदय, हृदय सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, आरंभ में हृदय की बात आई है, है ना, वचन किस रीति से हृदय पर हो रहा है, और वो कह रहा है संपूर्ण हृदय से, क्योंकि हृदय कहेगा नो 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो ऐसा कर रहा था कोई बात नहीं, वो धोखा देगा। लेकिन हम कहाँ आएंगे? बाइबल में आएंगे, परमेश्वर के वचन में आएंगे। क्या वचन ऐसे सिखा रहा है, क्या वचन ऐसे सिखा रहा है? मैं पिछले दिनों में एक भाई से बात कर रहा था, वो मुझसे कहता है कि बार बार वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है, ओ वेट एंड सी, वेट एंड सी, रुको, ध्यान दो, प्रतीक्षा करो। जरूर ये परमेश्वर के वचन के ऊपर ठहरना है, मुश्किल होता कई बार, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन पर सह रहे हैं तो कोई सार एक लंबे रास्ते से जाना, इस बात को ध्यान रखिए, कई बार परमेश्वर मुझे और आपको लंबे रास्ते से ले जाता है। परमेश्वर के योजना में शॉर्टकट नहीं है। इसराइलियों को परमेश्वर 11 दिन के रास्ते की जगह 40 वर्ष घुमा के ले गया। क्यों? उसने कहा मैं देखूं तेरे मन में क्या है, तू मुझ पर विश्वास करता, भरोसा रखता है कि नहीं, मेरे वचन को मानता है कि नहीं। ये परमेश्वर कह रहा है, इसराइल से कहा मैं तुम्हें लंबे रास्ते से इसलिए लेकर के आया हूं ताकि मैं तुम्हें देख लूं कि तुम्हारे मन में क्या है, तभी तो पता चलेगा कि तुम कितना धीरज धरते हो, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि कितना तुम मुझसे प्यार करते हो, तभी तो पता चलेगा तुम कितना मुझ पर निर्भर हो, तभी तो पता चलेगा तुम कितना अधिक मेरे पर विश्वास करते हो, तभी तो पता चलेगा तुम कितना अधिक मेरी मानने के लिए तैयार हो। अरे प्रभु इतने लंबे रास्ते से क्यों ले जा रहा है, कब तक? कहीं पानी नहीं मिल रहा है, कहीं ये नहीं मिल रहा है, कहीं वो नहीं मिल रहा है, बादल मुश्किल कर रहे हैं, कहीं पीछे के फिरौन के सेना के लोग पीछे आ रहे हैं, कहीं ये हो रहा है, कहीं हो रहा है, क्यों नहीं जल्दी से हमें कनान में प्रवेश करा देता, जल्दी से कनान में प्रवेश करा देता, सब कुछ छूट जाता। नहीं 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 नहीं, वो लंबे रास्ते से लिया। कई बार हमारी प्रार्थना में देर लगती है उत्तर में, बहुत सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हमें अपनी सफलता के लिए, अपने विवाह के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कई चीजों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन परमेश्वर कई बार, लेकिन क्या देखना चाहता है? परमेश्वर देखना चाहता है कितना अधिक उस पर निर्भर है। और वो इसीलिए कह रहा है कि तू संपूर्ण हृदय से यह पर भरोसा रखना, अपनी समझ का सहारा लेना। और फिर अपने समझ का सहारा लेने के बाद हम शॉर्टकट ले लेते हैं, और कुछ चीजें दिखने में तो अच्छी दिखाई देती हैं, वो उत्तम नहीं रहती। मैं बार बार बोलता हूं कि जब प्रभु की सेवा में आ रहा था और मैं एक प्रभु के सेवक के पास गया और मैंने उससे कहा, उस समय जब मैं एचएल में काम करता कि ब्रदर वो प्रभु में चले गए, समय निकलियाना, डॉक्टर निकलियाना नाम था उनका, नॉर्थ ईस्ट के थे। मैं गया कि क्या नाम से, मुझे क्या करना चाहिए, एचएल छोड़ना है, क्या करना चाहिए, और ये बहुत सारी लंबी बात है। तब उन्होंने एक सेंटेंस कहा था, मैं कभी नहीं भूलता। उन्होंने कहा था, गॉड दे विल वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय ए बेस्ट थिंग बाय गिविंग गुड थिंग। शैतान हमें अच्छी वस्तुओं को देने के द्वारा उत्तम वस्तुओं को छीन लेता है। दोनों में तुलना करिए, अच्छी और उत्तम। परमेश्वर हमें उत्तम देता है, संसार और शैतान शायद हमें अच्छा दे सकता है। सो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में अच्छी हो सकती हैं, लेकिन शायद वो उत्तम नहीं हो सकती, चाहे वो नौकरी के सिलसिले में हो, चाहे मित्रता के सिलसिले में हो, चाहे अपने भविष्य के सिलसिले में हो। और इसलिए मैं साधन, और शैतान क्या कहता है, तुम जल्दी से कर लो, तुम ये जल्दी से कर लो, तुम ये जल्दी से कर लो। और हम जल्दी से कई बार ऐसा निर्णय ले लेते हैं, वो जीवन भर दाग हमारे लग जाता है। और हमें साधन होना है, हमें क्या करना है, ऐसे समय में हमें प्रभु के लोगों के पास जाना है, विश्वास से पास जाना है। अच्छा आइए हम प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे निर्णय के लिए प्रार्थना करो, मेरे भविष्य के लिए प्रार्थना करो। हम अकेले नहीं, कई बार हम अकेले निर्णय लेने में मुश्किल हो जाता है। परमेश्वर ने इसे कलीसिया दी है, विश्वास से दिया, अगुओं को दिया है, हम उनके पास जाके बैठ के बातचीत कर सकते हैं, प्रार्थना करते हैं, सुझाव ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। ये है, जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तो परमेश्वर के सिद्धांत, परमेश्वर ने अपने वचन में सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करते हैं, इसको हमें नहीं भूलना है। और वो ही कह रहा है कि तू संपूर्ण हृदय से यह पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा लेना। आप सोच सकते हैं शायद 2019 में आपने कुछ बातों के लिए अपने समझ का सहारा लिया, क्या फल हुआ, क्या प्रतिफल मिला आपको? प्रार्थना कीजिए कि 2020 में आप प्रभु पर पूरी रीति से निर्भर हो सकें, और निर्भर होकर के, क्योंकि आपने अगर उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, और यदि वो आपके जीवन का प्रभु है, उसने आपके पापों को क्षमा किया है, आप उसके साथ संगति में रहते हैं, आप उसके साथ वचन का आदर करते हैं, तो आप उसे प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मुझे और सिखाइए कि मैं कैसे आपके ऊपर निर्भर रह सकूं, मैं तो निर्बल हूं, मैं असहाय हूं, मैं जल्दीबाजी करता हूं, मुझे संभालिए, मेरी सहायता कीजिए। और हम ऐसे करके परमेश्वर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जब परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यही तो चीज हमें मांगनी है, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मैं और अधिक आप पर निर्भर रहना सीख सकूं, मैं अपने आप में नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, मेरे मददकार की मदद कीजिए। तो ये कहता है, तो ऐसा करेगा, उसी कह रहा, उसी को स्मरण करके सब अपने काम करना, तब वो तेरे लिए क्या ऐसा मार निकालेगा। परमेश्वर में सीधे रास्ते में ले चलने वाला परमेश्वर है, समझ, परमेश्वर हमें धोखा नहीं देता, परमेश्वर हमारे साथ चल नहीं करता, परमेश्वर हमारे साथ अंधकार में हमें नहीं लेके चलता, परमेश्वर ऐसा लेके चलता ताकि हम दूर से देख सके कुछ चीजों को, परमेश्वर करता है। कहता है वो तेरे लिए सीधा मार निकालेगा, और निकालने वाला, मार निकालने वाला वो है, हमारे जीवन को संभालने वाला वो है, हमारे जीवन को बढ़ाने वाला वो है, वो ऐसा कहता है। और तब उसके बाद कहता है वो तेरे लिए सीधा मार निकालेगा, सातवें पद में, सात और आठवें पद में, कि आप अपनी बुद्धि को आगे मत रखिए, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ मत बनाइए, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत होइए, अपनी दृष्टि में तू बुद्धिमान ना बनना, यहोवा का भय मानना और बुराई से विमुख रहना। अपनी दृष्टि में बुद्ध, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं, मैं बहुत सीख गया हूं। किसी को आप वचन समझाने लगे वो आपको समझाने लगता है, नहीं 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 भाई, शांति से सुनिए तो, समझिए तो, बड़े लोगों का अनुभव तो जानिए, कुछ और शिक्षा को जानना है। नम्रता हमें सीखने के लिए तत्पर बनाती है, बहानेबाजी नहीं सिखाती। और कितने लोग ऐसे जो आज जीवन में हम देखते हैं इनको। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ उन सेवकों के लिए और जिनकी सेवा में कम से कम मैं 25-30 साल उनके अंदर में रहकर ऐसी सेवा यहाँ तक नहीं पहुँचा। 25-30 साल अगर वो कुछ कहते थे मैं उनकी सुनता था, सीखता था। कई बार समझ में नहीं आता था, कई बार बुरा भी लगता था, कई बार अंदर अंदर प्रतिक्रिया भी होती थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो आज उनके योगदान की बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूँ। उनकी भलाइयों को मैं कभी कभी भी नहीं भूल सकता। उन्होंने शायद यातना दी होंगी, शायद डिसिप्लिन क्या होगा, ताड़ना दी होगी, बहुत कुछ हमारे मन के अनुसार नहीं किया होगा, लेकिन अगर आज यहाँ तक हम खड़े हुए हैं तो उनकी बदौलत। और मेरे प्रिय सच्ची बात है, और हमें समझना है, हमें बुद्धि की ज़रूरत है भाई, हमें समझ की ज़रूरत है, प्रतिदिन ज़रूरत है, हमें नम्रता से स्वीकार करना है भाई उन बातों को। और एक व्यक्ति जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है वो कह रहा है तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनना, यहोवा का भय माने। यहोवा का भय मानने का मतलब क्या है, उससे पहले कह रहा है, उससे पहले बोल चुका है, वो कह रहा है छठे पद में कहा है उसी को स्मरण करके सारे काम करना अर्थात उस पर निर्भर रहना, बुद्धिमान बना बुराई से, इससे तेरा शरीर स्वस्थ रहेगा और तेरी हड्डियों को पुष्टता प्राप्त होगी। शरीर स्वस्थ रहेगा क्या बीमारी नहीं आएगी, केवल बीमारी की बात नहीं है। जब बाइबल में हम बीमारी की बात करते हैं, पिछले हफ्ते भी मैं बोला था उससे पहले, तो केवल शारीरिक बीमारी की बात नहीं है, कितने लोग मानसिक रोगी हैं, बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, ये क्या ये बीमारी है। प्रभु के भवन में नहीं आ पा रहे हैं, प्रभु को दे नहीं पा रहे हैं, अपने घर में कुछ कर रहे हैं, हाय पैसा हाय पैसा, उनका दिमाग 24 घंटे लगा पड़ता है, क्या हो रहा है। वो स्वस्थ नहीं है, मानसिक रीति स्वस्थ नहीं है, आत्मिक रीति स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ केवल बिस्तर में बीमारी में बुखार में पड़ना या हड्डी के टूट जाना वही नहीं है, लेकिन चलते फिरते भी आदमियों को बहुत लोगों को आप अस्वस्थ पाते हैं, उनके विचारों में, उनके मस्तिष्क में, उनकी सोच में, उनके दिमाग में बीमारी घिरी रहती है, वो अस्वस्थ है। गलत सोचना, गलत विचार करना, गलत निर्णय लेना, सोचते तो बैठे हैं खा रहे पी रहे हैं लेकिन उनका विचार एक गलत चल रहा है, चलो बीमार है वो, हमें देखना है। प्रभु कहता है तो ऐसे करने पर जब परमेश्वर पर निर्भर रहेगा, उसके वचन के अनुसार चलेगा, उसके अपने दृष्टि में तो बुद्धिमान नहीं होगा तो स्वस्थ रहेगा। परमेश्वर हमें स्वास्थ्य देने वाला, वो कह रहा है तेरी हड्डियों को पुष्टता प्राप्त होगी, हड्डियों को पुष्टता प्राप्त होगी, ये मतलब नहीं कि गिरने से हड्डी नहीं टूटेगी, टूट सकती है हड्डी, नहीं भी टूट सकती, टूट भी सकती है, कोई बात नहीं, वो परमेश्वर जानता है टूटे ना टूटे। अगर मैं बता रहा था ना एक बार कि एक व्यक्ति गिर गया ऊपर छत पर से हमारे बेतल में बहुत पहले, और जो पास्टर था वो प्रार्थना करने लगा, और उस समय तो मैं नए प्रभु में आके कुछ वो प्रभु आपका धन्यवाद हो इसके टांगी टूटी है, मैंने कहा इसकी टांगी टूटी और वो प्रभु का धन्यवाद कर रहे हो, प्रभु के सेवक क्या बात है कि टांग, तब बाद में पता चला वो कहने लगे कि टांग टूटी, टांग तो प्लास्टर चढ़ के एक महीने बाद फिर भी वो चलने लगेगा, काम करेगा, अगर खोपड़ी में इंजर लग जाती, कुछ और लग जाता, कुछ और हो जाता तो क्या होता। प्रभु जब कुछ करता है बहुत सारी चीज़ समझना है, इस चीज़ को हमें समझना है। तो यहाँ पर वो कह रहा है तब आगे चल करके वो कहता है तेरा ऐसा करने के तेरे शरीर स्वस्थ रहेगा, अपनी सारी उपज का प्रथम फल से तथा अपनी संपत्ति का द्वारा यहोवा का। अंकल जी ये प्रचार मत करिए, आगे बढ़ जाइए, लेकिन है बाइबल में इसलिए प्रचार करना है इसलिए, और साल के शुरू में ही अपनी सारी उपज के प्रथम फल तथा अपनी संपत्ति के द्वारा यहोवा का आदर करना। ये तो पुराने नियम की बात है, पुराने नियम की बात, नए नियम की बात दिखाइए कहीं। निर्गमन में परमेश्वर ने पहले से जैसे इसराइल लोग निकले थे व्यवस्था ठहराई थी, और बार 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 परमेश्वर निर्गमन उन्ती में 19 में भी है, बार बार परमेश्वर ने इसका कहा था कि तू ऐसा करना। क्या मतलब है, मतलब क्या इस बात को समझना, मतलब यह है कि जब परमेश्वर हमें आशीषित करता है तो हम अपने देने के द्वारा अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं, देने के द्वारा अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और इस चीज को हमें समझना है, ये परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से सिखाता है। वो जो आप कह रहे हो तीमुथियुस उसका अलग शिक्षा है, वो सेवकों के बारे में अलग शिक्षा है, ठीक है वो अलग है, पर यहाँ पर और नए नियम में भी परमेश्वर ने बार बार इस बात को सिखाया है, पौलुस से सिखाया है। ये हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर है, हम कैसे इसको समझते हैं। अच्छा है, ठीक है, आइए दूसरा क्रंथियों उसका 8वां अध्याय में आइए। केवल 3-4 पदों को पढ़ूंगा मैं, ज़्यादा नहीं और लंबा नहीं जाऊँगा इस पर ये परमेश्वर के वचन का शुरू से एक विधान रहा, जिससे कलीसिया और प्रभु की सुसमाचार प्रभु की सेवा, कभी अगर मौका लगेगा मैं बहुत विस्तार से इसको ले सकता हूँ, उत्पत्ति से लेकर आखिर बात तक क्योंकि उत्पत्ति सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार से धन्यवादित होकर अब्राहम ने दशांश चढ़ाया था। पर उसके बाद दूसरा ग्रंथ उसके आठवें अध्याय में इनको देखिए, ये तीन या चार पद पढ़ूंगा मैं, ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा। यहाँ पर हेडिंग क्या लिखा हुआ है, उदारता को प्रोत्साहन। उदारता मतलब जब मन उदार है परमेश्वर के उपकार के प्रति, परमेश्वर के कार्य के प्रति, तो हम उदारता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, कंजूसाई के साथ नहीं, कुड़कुड़ाहट के साथ नहीं, किसी और व्याकुलता के साथ, बेचैनी साथ। लेकिन तीसरा पद, मैं साक्षी देता हूं कि उन्होंने अर्थात मैसेदोनिया की कलीसिया है, अपनी शक्ति के अनुसार वरन क्षमता से अधिक अपनी इच्छा से दिया। क्षमता से अधिक, उनकी क्षमता कुछ और है लेकिन उससे अधिक वो परमेश्वर को देने तैयार है। पांचवा पद, और उन्होंने हमारी आशा से परे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, ध्यान दीजिएगा यह सीक्रेट है, अपने आप को पहले प्रभु को, पहले किसको, प्रभु को, फिर हमें भी दे दिया। प्रभु को देना मतलब क्या, अर्थात मतलब ये इंग्लिश में जो शब्द है वो ये है कि उन्होंने अपने जीवन को पहले परमेश्वर को समर्पित कर दिया। अगर मैं और आप देने में बहाना करते हैं, इसका मतलब मेरा जीवन आपका जीवन समर्पित नहीं है। सब बातों में परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं, गाली खाने में, मार खाने में, प्रचार करने में, सुसमाचार बांटने में, सब कुछ में हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे कठिन काम मसीह जीवन मालूम क्या है, सबसे कठिन काम प्रभु के देने में। सबसे, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था और मैं शायद पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उस दिन के लिए जिस दिन प्रभु ने मुझे सिखा दिया। शायद मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, 1979 में, उससे पहले मैं एचएल में काम करता था, सैलरी मिलती थी, पता नहीं आता था कहाँ जाती है सैलरी, सैलरी आई उससे पहले मैं उधार बन जाता था। लेकिन 79 में मुझे दिल्ली जाना पड़ा, और जब दिल्ली जाना पड़ा, दिल्ली में मैंने कई बार बता चुका हूँ, कुछ समय के लिए मेरे एचएल बेतल ने मुझे भेजा, और उस समय हैप्पी बिटिया हमारी छोटी थी, आंटी भी नहीं वहाँ थी, तो मैं वहाँ पर कुछ महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए गया था। और क्या हुआ कि कुछ ओएम के भाई लोग मेरे साथ थे और वो मुझसे मिलने के लिए बाराबंकी, वो दिल्ली में आ गए। अब मुश्किल ये था कि मेरे पास उस समय केवल 40 रुपए थे, उस समय की बात बता रहा हूँ, हालांकि 40 रुपये बहुत होते थे। और ये भाई लोग गए, अब मेरे मन में घुस चलने लगा कि मेरे भाई, परमेश्वर कह रहा है ये भाई लोग तुझसे मिलने के लिए आए और इनको तू कुछ इनकी मदद कर। बहुत संघर्ष था, वो करीब 3-4 घंटे मेरे साथ रहे, मैंने उनको खाना खिला दिया, हॉस्टल में तो फ्री खाना मिल जाता है, खाना खिला दिया। अब परमेश्वर मुझसे और लगातार कंटिन्यूशन में मेरे साथ ये बना था। और तब उसके बाद प्रभु ने मुझसे कहा कि नहीं, तीन भाइयों को तुझे कुछ करना है। खैर मैंने 20 रुपये निकाल के अलग लिफाफे में रखे, वो जेब में डाली, फिर भी हिम्मत नहीं हो रही, मैं यही हो रहा हूँ, मैं इसको दे दूंगा तो मेरा कल का क्या होगा, इसको दे दूंगा तो कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, अभी सलोमी और बच्चे तो देर में आएंगे, ऐसा ऐसा कई सारी बातें। खैर फाइनली मैंने उसको उनको दे दिया, प्रभु की दया से प्रभु ने मुझे मेरी मदद करी और प्रभु के अनुग्रह से मैं वो ले लो, ये लोग भाई लोग चले गए। दूसरे दिन फ्राइडे उस दिन था, सैटरडे को मेरी मौसी फूफी जिसको कहते हैं फूफी थी वहाँ पर, और मैं अक्सर उनके यहाँ जाता था, और जब भी मैं उनके यहाँ जाता था वो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ दिया करते थे। अब दूसरे दिन सैटरडे था तो मैंने कहा मैं फूफी के यहाँ जाता हूँ, जब भी जाता हूँ कुछ ना कुछ देती हैं, तो 20 रुपये थे और 9 रुपये की मैंने आधा किलो मिठाई ली और मैं लेके उनके घर चला गया। अब 1 रुपये बस का किराया, 10 रुपये मेरे जेब में बचे। अब जब मैं फूफी के पास गया, सब बातचीत सब कुछ अच्छा हुआ सारी चीज़ें, तो फूफी ने बाद में क्या कहा, कहले बेटा बहू कब आ रही है सलोमी के लिए, बहू कब आ रही है, अच्छा सलोमी और हैप्पी, मैंने कहा अगले महीने आएंगे, अच्छा ठीक है तुम उनको दोनों को लेकर आना, और उन्हें मुझे सुख्यात कर दिया। मन में सोचने लगा अगर मुझे मालूम होता तो मैं आता ही नहीं है, वो जो था वो भी खत्म हो गया, क्या करूँ। अब जितनी देर उनके, अब गुस्सा बहुत गुस्सा, लेकिन आंटी ने कहा था कि उनकी एक फ्रेंड है, आप थोड़ी अगर जाएंगे वहाँ पर और पास में रहती तो आप उनसे मिल लीजिएगा। वो लोग मुझे नहीं जानते थे, लेकिन आंटी के बहाने मैं उनके यहाँ चला गया। मैंने कहा ठीक है, और वहाँ कुछ अपेक्षा नहीं थी क्योंकि मैं उनको जानता नहीं था। खैर उन्होंने बैठाया मुझे, मेरे से साक्षी पूछी, मैंने अपनी साक्षी दी, सब कुछ दिया, उन्होंने कहा बेटा खाना खा के जाना, खाना भी खिलाया। अब मन में तो मेरा ये कि कहाँ आ गया मैं आज फूफी के यहाँ, और बात वो कर रहा हूँ, साक्षी दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन उनके कारण बहुत गुस्से में, क्योंकि अब सब। पर क्या हुआ, जब मैं उसके बाद उनके पास से चलने लगा तो चलते चलते उन्होंने मेरे हाथ में लिफाफा रखा। मैंने आशा कभी नहीं की थी, उन्होंने लिफाफा रखा। अब लिफाफा तो आ गया मेरे हाथ में, अब एक और हलचल मच गई कि ये लिफाफा खोलूं और देखो इसमें क्या है। अब वो कहने लगे बेटा चलो मैं तुम्हें बस में बैठा देता हूँ। मैंने नहीं 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 अंकल कोई बात नहीं मैं चला जाऊंगा। नहीं 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 तो मैं बैठाऊंगा मैं बस में। अब वो बेचारे मेरे साथ पीछे पड़े। अब मुझे उनका बायबा और टाटा की चिंता नहीं, मुझे चिंता ये लिफाफा खोलो देखूँ क्या है, लिफाफा देखो। अब खड़ा हुआ हूँ मैं, बातचीत कर रहा हूँ और लिफाफा तो खोलने को नहीं मिल रहा है, लिफाफा खोलने मिले। अब वो खड़े हुए, मैंने कहा अंकल चले जाइए बस आ जाएगी मैं चला जाऊँगा। नहीं नहीं बेटा रुक जाओ। खैर फाइनली बस आई, उन्होंने मुझे बस में बैठाया। जैसी बस छोड़ कर गई और मैं बस में बैठा, मैंने लिफाफा खोला, उस समय उस लिफाफे में 100 रुपये थे। मैंने आंसू के साथ पश्चाताप किया, मैं कभी नहीं भूलता। वहाँ से मेरा जीवन बदला है पैसे के मामले में। वो बस में मैंने रो रो के पश्चाताप किया, प्रभु से क्षमा मांगी और उस दिन से मेरा जीवन का प्रभु प्रभु बना, पैसा नहीं बना। और जब मैं दोबारा चर्च में आया, संडे था, जो कुछ मुझे करना था मैंने किया। उसके बाद मंडे था, मंडे को मुझे ऑफिस में बुलाया गया और प्रभु के सेवक थे और उन्होंने कहा कि रॉली ये तुम्हारे लिए किसी ने लिफाफा दिया लेकिन नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा नाम मत बताओ। और वो इतना उसमें पैसा था कि मेरी लाइफ आने वाली थी, मेरी बेटी आने वाली थी, मैं उनकी देखभाल अच्छी तरह से कर सकूँ। मैंने वहाँ से कहा और मैंने घुटनों के बलों के प्रभु जानता है, आज जो सीन मुझे याद आता है, मैंने अपने कमरे में बार 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 पश्चाताप किया और मैंने कहा प्रभु आज से मेरे जीवन में पैसा पहला स्थान नहीं होगा, पहला पैसा स्थान होगा। और मैं प्रभु को धन्यवाद हूँ, प्रभु ने सहायता की और वही मेरे बच्चे सीखने पाए और मैं सिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अपने मेरी तीसरी जनरेशन भी इस बात को सीखे, उसके बाद भी जो आते हैं वो इस बात को सीखे, पैसा प्रधान नहीं है, प्रभु प्रधान है। और मेरे यही परमेश्वर का वचन सिखाता है, यही वचन सिखाता है। बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे अनुभव जो मैं आपके साथ बांट सकता हूँ, प्रभु ने इस सेवा में सिखाया है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर देने वाला है और यहाँ पर ये कहता है कि तू अपनी उपज, सिर्फ यह है कि उसका सम्मान करो, धन के द्वारा, अपने सब कुछ के द्वारा, अपनी शारीरिक संपत्ति के द्वारा उसका सम्मान करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो कह रहा है तेरे भंडार बहुत ऐसे भरे रहेंगे और तेरे कुंड नए धागे। कोई बहानाबाजी की जरूरत नहीं है। प्रभु तूने तो इतना उपकार किया है, क्या कोई हमारे लिए हमारे लहू अपने लहू को बहा सकता था? दुनिया में नहीं, शिक्षा दी है लोगों ने, बहुत कुछ करे हैं, लेकिन किसी ने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान नहीं किया, किसी ने कीमत नहीं चुकाई, केवल यीशु मसीह ने कीमत चुकाई। अगर उसने मेरे और आपको नरक में निकालने से, पाप में निकालने से, उस दंड के आदमी से निकालने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुका करके मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार कर दिया, इतनी अधिक आशीष दी, क्या चीज़ अब मेरे पास है, क्या चीज़ मैं उसको दे सकता हूँ? कुछ नहीं दे सकता हूँ मैं, ये दंड तो केवल बहाना है। और इसलिए मेरे प्रियो, सच में और परमेश्वर का चिंता, सब कुछ परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा युगानुयुग होते रहे। और इसीलिए तब वो आगे चल कहता है, इसलिए भाइयों मैं तुम्हें विनती देने का स्मरण करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और बहुत बलिदान करके चलाओ, ताकि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, वो सोच के नए, अरे सारे बहानेबाजी खत्म हो जाए, नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, परमेश्वर की सिद्ध और भली भांति इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। ये परमेश्वर का वचन कहता है। रोमियो उसका 11 अध्याय उसके 33 पद से लेकर के रोमियो 12 अध्याय के पहले दूसरे पद तक, अंतिम बात आगे चल करके 11 और 12 पद कहता है, मेरे पुत्र यहोवा की ताड़ना का तिरस्कार मत करना। यहोवा डोंट रिजेक्ट हिज डिसिप्लिन। परमेश्वर की ताड़ना का क्या कह रहा है? तिरस्कार ना करना, ना उसके डांटने से बुरा मानना, बुरा मत मानेगा। बीमारी आती है, दुख आती है, कठिनाई आती है, बस पूछिए प्रभु से, प्रभु क्या सिखाना चाहता है, प्रभु क्या सिखाना चाहता है, प्रभु क्या इसमें आप मेरे आपके क्या भेद है, क्या आपकी बीमारी, आपकी कठिनाई आपको परमेश्वर के निकटता में लाने का कारण होना चाहिए। आपको याद है जब मुझे 2017 में बेल पाल्सी का अटैक हुआ था, 1 महीने में प्रभु ने खड़ा किया और यहाँ पर मैंने वचन बांटा था आपका अय्यूब से, क्योंकि उसी रात मैं परमेश्वर के पास बैठा, मैंने परमेश्वर आप क्या सिखाना चाहते हैं, और परमेश्वर ने अपने वचन से अय्यूब उसके 5 अध्याय से मुझे बात करी और मैं उसको यहाँ पर बांट सकता। जब भी कोई ऐसी बात है हमें परमेश्वर, प्रभु आप इसमें क्या सिखाना चाहते हैं, कहाँ मेरे अंदर कमी है, मुझे क्या सीखना है, क्यों ये करना चाहते हैं, आपका प्रेम अद्भुत है, वो भी प्रेम, इसीलिए कहता है कि वो किससे, जिससे वो प्रेम करता है उसे वो कह रहा है, कहता है जैसे क्योंकि जिससे वो प्रेम करता है उसे डांटता है। हम सड़क पर चलते हुए बच्चों को नहीं डांट मार सकते, पर जो हमारा अपना है उसको हम परवरिश करते हैं, उसकी हम देखभाल करते हैं। जब हम कलीसिया में अगर बच्चों को हम डांटते हैं, अनुशासित करते हैं, माता पिता अनुशासित कर, बच्चे अपना समझ के अनुशासित करते हैं, हर एक बच्चों को नहीं कर सकते। ये प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर हमारे जीवन में करता है और कलीसिया एक दूसरे के लिए करती है, ये आशीष की बात है हमारे लिए, ये प्रेम की बात है, उसको हमें समझना है। वो कह रहा है कि ऐसा करने से क्यों, जैसा पिता उस पुत्र को जिससे वो अधिक चाहता है, ये परमेश्वर का प्रेम है। नहीं तो परमेश्वर छोड़ दे, जाओ भाई जाओ जो कुछ कर, नहीं, परमेश्वर हमारे विनाश को नहीं देख सकता, परमेश्वर हमारी बर्बादी को नहीं सकता, परमेश्वर हमारे उस जीवन को नहीं देख सकता जो मखौल में उड़ा है। परमेश्वर हमें अपनी निकटता में लाना चाहता है। प्रभु सहायता करें। पिछले दिन में हम 31 को सुन रहे थे उस बहन से जिनका इस कितना बड़ा नुकसान हुआ था। इस बार एक सामने बेटी की शादी थी, लेकिन भाई चंद्रशेखर से सुन रहे थे कि आरंभ से ही कितना बड़ा नुकसान हो, कितने लोगों ने शेयर करा था इस बात को कि कैसे कटाई में, लेकिन प्रभु ने उनको सिखाया, उनके निकटता में आए। मेरे प्रियो, ये साजिश, हमारी सुस्ती, हमारी लापरवाही, हमारी आलस, हमारी बहानेबाजी, ये हमें विश्वास में आगे नहीं बढ़ा सकती। हमारा परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए सब कुछ है। इसलिए 2020 में प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, हम परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दे सकें। और यदि प्रभु आपकी आपको ये प्रोत्साहित करता है, जाइए घर में, आप 3 अध्याय के 1-12 पद को, 1 आज्ञाओं को साइड में लिखिए और उसको साथ में, केवल चिपका के लगाने के लिए नहीं, लेकिन उसे प्रार्थना मांगिए, सहायता मांगे कि प्रभु की सहायता से मैं और आप उसके अनुसार जीवन व्यतीत करके आगे बढ़ सकें और प्रभु का आदर दे सकें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।